الحمد لله وكفى والسلام على الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم تسہیل بہشتی زیور کتاب میں سے کتاب السلوک و احسان پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی جو موضوع چل رہا ہے وہ آخری، یعنی اس کے تین موضوعات ہیں اور ان میں سے آخری موضوع ہے شیخ کامل کے ساتھ تعلق. تو اس میں اب تک ہم نے پیری مریدی کا بیان جو ابتدا میں حضرت نے عنوان باندھا پڑھ لیا، اس میں جنرل بات کری کہ جی کئی فائدے ہیں اس کے، پھر اس کے بعد شیخ کامل کی علامات کے بارے میں تفصیل سے بات کری تھی کہ شیخ کامل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی 100% پرفیکٹ انسان ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ٹرم ہوتی ہے نا، بظاہر ٹرم تو ہمارے اکابرین نے استعمال کری ہے کتابوں کے اندر، یہ ٹرم ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن اس کو اوپر سے دیکھ کر کے کوئی انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، یا تو یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اس کو کہ ہاں بھائی شیخ کامل کا مطلب ہے کہ کوئی کامل شخص ہوگا، ہر طرح سے جو ہے وہ پرفیکٹ ہوگا، پرفیکشن کا نمونہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اس کو پڑھ کر کے، اس لفظ کو پڑھ کر کے شیخ کے بارے میں ایسی توقعات وابستہ کر لے، صحیح ہے. اور دوسری مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اس کانسیپٹ کے خلاف ہیں، تزکیہ نفس کے خلاف ہیں اور شیخ کے ساتھ تعلق رکھنے کے خلاف ہیں کہ نہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے شیخ کی، کیا ضرورت ہے، اللہ کافی ہے نا، اللہ ہے نا سب کچھ، اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں اللہ ہے نا، ٹھیک ہے. کل وہ کسی دوست سے بات ہو رہی تھی تو ان کو بتایا اگر آپ کسی جنگل میں جا رہے ہوں اور وہاں پر آپ کو یہ خوف ہو کہ کوئی شیر اور کوئی چیتا جو ہے نا وہ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو چیر پھاڑ کے ختم کر دے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ جنگل کے اندر جو ہے وہ ایسے اکیلے نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ آپ جو ہے آپ سیفٹی میجرز لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے سفر کرتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی شیر میرے اوپر حملہ کر کے مجھے چیر پھاڑ نہ دے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ کوئی آپ سے آ کر کہے کہ اللہ ہے نا، رائٹ، اللہ ہے نا، بس تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو کہ اللہ میری شیر اور چیتے سے حفاظت فرما دے، اور پھر اس کے بعد چلتے رہو، ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی آپ سے آ کے کہے گا تو آپ کا فوراً یہ جواب ہوگا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی پڑتی ہیں اور سیفٹی میجرز بھی لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر بات جو ہے وہ یہی والی بات جو ہے نا وہ شیطان سے حفاظت کے لیے جب کری جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر اللہ ہی ہم سے سمجھے گا کہ اللہ ہے نا کا مطلب ہم نے کیا سمجھ رکھا تھا. تو شیخ کامل کی یہی مثال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرشد سے تعلق کے آداب پڑھے تھے. آداب یہ اس راستے کے اوپر فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں. تو ان میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ کا تو ہم نے ایک کتاب کمپائل کروائی، خود نہیں کمپائل کری ہے حضرت نے، دوسروں سے کروائی ہے. شروع میں کچھ چیزیں حضرت کی اپنی بھی ہیں اس کے اندر، لیکن مواد جو ہے نا وہ اکٹھا حضرت نے دوسروں سے کروایا تھا. تو وہ بعد با نصیب جو کتاب ہے نا اس کے اندر شیخ کے آداب ہی موجود ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور ان کو جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے آداب سے شروع ہو کر کے وہ اختلاف کے آداب تک، وہ کتاب بہترین یعنی کلیکشن ہے. अदब आदाब की, और अदीन हूँ कुल्लुहु अदब, इससे जो है वो उस किताब को शुरू किया कि दीन तो सारा सरासर अदब ही का नाम। तो हर चीज से फायदा उठाने के लिए उसके आदाब मालूम हो तो फायदा ज्यादा हासिल होता है, खूबसूरती पैदा होती है उस फायदे के अंदर। तो उसी तरीके से मुर्शिद से या शेख से फायदा उठाने के लिए भी आदाब का मालूम होना और एहतियात करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद हजरत ने एक बहुत अहम उनवान बांधा जो कि आज के दौर के अंदर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर बेदीन पीर से ताल्लुक हो जाए तो फिर क्या करें, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आखिरी बात ये पढ़ रहे थे कि शेख के साथ ताल्लुक हो, यानी दीनदार शेख है, सही शेख है, उसके साथ अगर ताल्लुक है तो फिर जो है ना वो फौरन से बदगुमान नहीं हो जाना चाहिए, बद एतकाद नहीं हो जाना चाहिए कि जी मुझे तो मजा मालूम नहीं हो रहा, वजीफे का जो है वो फायदा नहीं हो रहा, जिक्र असकार से जो है वो मुझे, तो भाई इसमें ये सोचना चाहिए कि बड़ा असर यही है कि अल्लाह का नाम लेने का दिल में इरादा पैदा होता है, यानी नेकी की जो है ना वो तौफीक या नेकी का शौक। तौफीक का मतलब होता है एक्चुअली आप नेकी का काम कर रहे हैं, यानी नमाजें पढ़ रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं और दीगर जो है वो नेकी का काम कर रहे हैं। एक होता है नेकी का शौक कि आप कर तो नहीं रहे हैं लेकिन करना चाहते हैं, आपका आपकी चाहत है कि मेरे अगर हालात अच्छे हो जाएं तो मैं नमाजें पढ़ूं, मेरे हालात अच्छे हो जाएं तो मैं ऐसे करूं, ये वाला काम करूं, मैं भी हज करके आऊं, मैं भी जो है वो उम्रे करूं, मैं भी जो है वो लोगों की मदद करूं, मैं भी जो है वो दीन का इल्म हासिल करूं। ठीक है, तो ये जो दिल के अंदर इरादा पैदा हो रहा है ना, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नेक तौफीक ही है और ये भी बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे असर का कभी दिल में ख्याल ना लाए कि मुझे ख्वाब में बुजुर्गों की ज्यारत हुआ करेगी, ना ख्वाब की जो है वो तमन्नाएं रखे और मुझे होने वाली बातें मालूम हो जाए करेंगी, या मुझे खूब रोना आया करेगा, यानी मुझे नमाज पढ़ूंगी तो मुझे जो है वो मेरे आंखें जारो कतार जारी हो जाएंगी और तिलावत करूंगी तो मुझे रोना आया करेगा। भाई बहुत अच्छी बात है अगर रोना आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है वो शेख ही बदलने जा करके, मुझे इबादत में ऐसा इन्हिमाक हो जाएगा कि दूसरी चीजों की खबर ही नहीं रहेगी। इबादत में इन्हिमाक का तो बताया था ना कि ये तो आखिरी दर्जा होता है, आखिरी यानी सबसे ज्यादा जो ऊंचा दर्जा है ना वो है इबादत में इन्हिमाक हासिल हो जाना, वरना इबादत के अंदर जो है वो ख्याल चलते रहते हैं इंसान के, इंसान का दिमाग जो है ना वो नॉर्मल फंक्शन का ये है कि उसके अंदर ख्याल चलते रहे। ठीक है, तो बड़े बड़ों के जो है वो दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं इबादत के दौरान भी, फर्क ये होता है कि हमारे दिमाग के अंदर गंदे ख्याल चलते रहते हैं, उनके दिमाग के अंदर अच्छे ख्याल चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे और गंदे का फर्क होता है। हमारे गंदे क्यों चल रहे होते हैं, क्योंकि हम नमाज के बाहर गंदे कामों के अंदर लगे हुए होते हैं, गुनाह के कामों के अंदर लगे हुए होते हैं, दुनिया की सोचों में लगे हुए होते हैं, इस वजह से नमाज के अंदर भी वही ख्याल चल रहे होते हैं। और जो लोग जो है वो नमाज के बाहर भी अच्छे कामों के अंदर लगे होते हैं, अच्छे ख्यालात में, अच्छी फिक्रों में लगे होते हैं, ठीक है, तो नमाज के अंदर भी उनके अच्छे ख्यालात चल रहे होते हैं। तो ख्यालात का तो ये मुआवजा है। अलबत्ता नमाज के अंदर इन्हिमाक हो जाना ये कभी कभी होता है, और ये भी जो है ना वो उसी तरह होता है कि आप कुरान मजीद की तिलावत सुन रहे हैं और उस तिलावत को सुन करके आपके ऊपर कैफियत तारी हो रही है, क्योंकि आप कुरान मजीद समझ रहे हैं और आपको जो है वो उसके मानी और मारिफ का पता है, इस वजह से जो है वो आपके ऊपर वैसी कैफियत तारी हो रही है। वरना ये नहीं होता कि पता नहीं जन्नत की सैरें करना शुरू हो गए और सातवें आसमान पहुंच जाए और ये हो गया। अच्छा, कभी कभी ये बातें भी हो जाती हैं और कभी नहीं होती हैं। अगर हो जाए तो अल्लाह का शुक्र बजा लाए, और अगर ना हो या होकर गुम हो जाए तो परेशान ना हो, अलबत्ता खुदा ना खास्ता। ठीक है, यानी हो जाती है तो शुक्रिया, नहीं इस किस्म कैफियात हो जाती है तो शुक्र अदा करें ना। ठीक है, शुक्र अदा करना असल में तो ये चीज है कि शुक्र की तौफीक मिल जाए, और अगर ना हो तो परेशान ना हो। अलबत्ता खुदा ना खास्ता अगर शरीयत की पाबंदी में कमी होने लगे या गुनाह सरजद होने लगे तो ये बात परेशान, ये दोनों एक ही बात है कि शरीयत की पाबंदी में कमी होने लगे या गुनाह होने लगे, दोनों का दोनों एक ही बात है। ये गुनाह होने का मतलब ही शरीयत की पाबंदी में कमी होना है, तो ये है परेशानी की बात, गुनाह है परेशानी की बात। जल्दी हिम्मत करके अपनी हालत दुरुस्त करे और पीर को इत्तला दे और वो जो हिदायत है उस पर अमल करें। पहले तो हिम्मत करके खुद ही संभलने की कोशिश करें, और अगर खुद से संभल नहीं पा रहा है तो शेख को इत्तला दे, क्या मतलब कि डॉक्टर को इत्तला दे कि भाई मैं बीमार हो रहा हूँ तो इसके लिए मुझे कुछ बताएं, कोई दवा बताएं, कोई दवा में तब्दीली करना तो वो तब्दीली करें, कोई एहतियात बताना तो वो एहतियात बताएं, और आप भी मेरे लिए दुआ करें, मैं खुद भी दुआ कर रही हूँ अपने लिए, लेकिन आप भी मेरे लिए दुआ करें। ठीक है, तो पीर को बताने का ये मतलब है, ये नहीं कि पीर जो है वो दूर बैठे हुए एकदम से कोई चिल्ला काटेंगे और पढ़ करके कोई फूंक देंगे और फिर जो है ना वो आपका सारा मसला हल हो जाएगा, इसके लिए नहीं। ये चिल्ले विल्ले के लिए पीर को इत्तला मत दे, बल्कि दुआ के लिए और दवा के लिए पीर को इत्तला दे, यानी वो कोई जिंदगी में तब्दीली, कोई ऐसे चीज पूछेंगे भाई आप क्या कर रही हैं, क्या आपके रूटीन में कोई तब्दीली आई है, कुछ आपने किसी के साथ कोई दुश्मनी उश्मनी तो नहीं शुरू कर दी है, कोई कीना कदूरत तो नहीं आपने दिल के अंदर पाल ली है, कोई ऐसा दूसरा मसला तो नहीं है, इस तरह से वो आपके आपको दवा का बताएंगे। ठीक है, तो वो जो हिदायत दे उस पर अमल करें, फिर दूसरे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी ना करें। दूसरे बुजुर्गों से मुराद ये है कि जो जो अहले हक बुजुर्ग हैं, अकाबरीन हैं, उनकी शान में गुस्ताखी, इसका मतलब ये नहीं है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शान में गुस्ताखी ना करें, क्योंकि उसको भी तो बहुत सारे लोग बुजुर्ग मानते हैं, राइट, उसको भी बहुत सारे लोग बुजुर्ग मानते हैं, तो जी उसकी उसकी शान में गुस्ताखी करना भी जो है वो भी ना करें, हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो इस किस्म के जो बुजुर्ग बन के बैठे हुए हैं ना, कादियानी हो या मिर्जा के जो है वो जो मौजूदा उसके खलीफा मौजूद है दुनिया के अंदर, है मिर्जा के खलीफे भी तो बहुत सारे आए हैं ना और आज भी मौजूद है, कहीं कनाडा में कोई बैठा होता है, कोई 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 लंदन में बैठा होता है, कोई कहीं बैठा होता है, उसी तरीके से बहुत सारे और भी आजकल तो ऑनलाइन बुजुर्ग मौजूद हैं, है ना, हर थोड़े दिन के बाद कोई ऑनलाइन बुजुर्ग साहब आ जाते हैं, या कोई बिदती हैं बहुत ही ज्यादा, यानी बिदात और खराफात के अंदर जो है वो लोगों को लगा रहे हैं, तो उनकी शान में भी गुस्ताखी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी तो लोग बुजुर्ग समझते हैं। मतलब ये नहीं है कि उनके जो मुरीदों के सामने बैठ करके उनको बुरा भला कहना शुरू हो जाए, ये नहीं कोई कह रहा, ये नहीं कोई कह रहा कि आप जो है ना वो कादियानी, तो एक एक बिल्कुल ही दूसरा एक्सट्रीम है ना वो मिर्जा गुलाम कादियानी, उसकी तो शान में गुस्ताखी करना जो है ये सवाब का काम, जान लें इस बात को, वो एक दूसरी एक्सट्रीम है। लेकिन उसके अलावा जो ये अहले बिदत वगैरह के जो होते हैं, तो उनके जो जो बहुत सारे मुआशरे के अंदर अहले बिदत लोग मौजूद हैं, वो उनको बुजुर्ग समझते हैं, तो अब उनके सामने बैठ करके खामखा उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है, क्या क्या जरूरत है उनकी बुराई करने की, लेकिन जो बहुत अहम बात है वो ये है कि उनकी दिल में इज्जत ना रखे, अपने दिल में उनकी इज्जत हरगिज हरगिज ना रखे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की इसके ऊपर बाकायदा कौल भी मौजूद है, हदीस मुबारक मौजूद है कि जिसने बिदअती की इज्जत करी, जिसने बिदअती की इज्जत करी ना, उसने दीन की इमारत को गिराने में किरदार अदा किया, दीन की इमारत को मुनहदिम करने में किरदार अदा किया, तो बिदअती की इज्जत करना ये दीन को खराब करने के मुतरातिब, तो हरगिज ऐसे लोगों की दिल में इज्जत होनी नहीं चाहिए, हरगिज नहीं होनी चाहिए। इस बारे में ना हम लोग काफी ज्यादा ना बड़े 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 कल्चर्ड और बड़े सिविलाइज्ड और बड़े रिफॉर्म बन जाते हैं इस मामले में, कि बेदतियों की भी है ना वो भी दिल के अंदर इज्जत करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब हमारे बड़े अगर किसी सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ अगर कोई काम बैठ करके कर रहे होते हैं, या कोई मुल्क के अंदर फसाद को अवॉइड करने के लिए अगर किसी बेदती के साथ खड़े हुए कहीं पर, या किसी चीज के अंदर जो है वो उनके साथ इत्तेहाद कर दिया, या इलेक्शंस के अंदर उनके साथ इत्तेहाद कर दिया, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप बिदअती के लिए जो है वो दिल में इज्जत पैदा करना शुरू कर, वो एक सियासी इत्तेहाद होता है, और सियासी इत्तेहाद जो है ना ये तो यहूदियों और मुशरिकीन के साथ भी किया जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये को थोड़ी कि आप यहूदियों की इज्जत करना शुरू कर, या मुशरिकीन की जो है वो ईसाइयों की आप इज्जत करना शुरू कर, सियासी इत्तेहाद एक अलग चीज होती है और ये सुन्नत से साबित है। ठीक है, तो उसको अलग रखें, खुद सियासतदान बनने की कोशिश ना करें, जो सियासतदान उलमाए कराम है उनको उनका काम करने दें, हम नहीं है सियासतदान उलमा, हमें कोई जरूरत नहीं है सियासतदान बनने की, है ना, आजकल तो है ना वो हर बंदा जो है वो सियासतदान बनने की कोशिश करना शुरू हो गया। ठीक है, उनमें फर्क है, वो सियासत का काम कर रहे हैं, तो उनको उन लोगों के साथ काम करने की जरूरत होती है, हम सियासत का काम नहीं कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं उनके साथ अच्छे जो है वो इज्जतें करने की उनकी, हम तो भाई अकीदे की बात करेंगे ना, हम तो अकीदे की फिक्र करेंगे, अपने ईमान की फिक्र करेंगे ना। मेरी आंटी दी, इन्होंने लिखा है कि मेरी आंटी दिन में नई नई बात कहती हैं, तो उनकी इज्जत करे या ना करे। आपकी आंटी, आंटी तो भाई हर किसी को आंटी कहते हैं, ठीक है। आंटी का मतलब क्या होता है? खाला, फुप्पो, मुमानी, चची, ठीक है ना, ये होते हैं खून के रिश्ते, ठीक है। या ये जो है वो यानी रिश्तेदारी है, उनको कहते हैं। सारी तो खून के रिश्ते नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी कहते हैं। खाला, ठीक है ना। तो अब खाला, अब आपने बोला है, तो अब पता चला कि अब आप खाला की बात कर रही हैं, ठीक है। तो खाला की जो है ना, वो खाला के तौर पे इज्जत करने की जरूरत है, उनके दीनी अकायद की और उनके दीनी अमाल की इज्जत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो बतौर खाला उनकी इज्जत करें, ठीक है। यानी अब आपको फर्क कैसे पसंद है, खाला के तौर पे इज्जत करें और जो है वो उनके दीनी अकायद की इज्जत करें, इन दोनों में फर्क है। आप यानी उनके किसी भी इस किस्म की बात है जो कि वो दीन के अंदर अपनी तरफ से कहती हैं या गलत बातें कहती हैं, तो उनको अप्रिशिएट ना करें कभी भी, ठीक है। और यानी उनको बतौर दीनी शख्सियत के जो है ना, वो उनको कोई अपना रहनुमा और मुक्तदा और दूसरों से उनकी तारीफ कर रही है, ऐसा हरगिज ना करें, ठीक है। लेकिन खाला तो वो आपकी है ना, सही है। तो जी खाला जी जी गलत काम कह रही है आपको करने को, तो बस जी 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 करके टाल दें उसको। और अगर सही काम कह रही है कहना करने को आपको कह रही है, तो वो आप कर दें, क्योंकि वो आपकी खाला है। अब ये तो ऐसे रिश्ते होते हैं ना। अब तो हम तो बात कर रहे थे कि जो कि बाहर वाले लोग होते हैं, उनका तो कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं होता, तो दूसरे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी ना करें, कि इसकी थोड़ी तफसील जो है वो आपके सामने रख दी है, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ना किसी और बुजुर्ग के मुरीदों से यूं कहे कि हमारा पीर तुम्हारे पीर से बढ़कर है, ऐसी बच्चों वाली बातें ना करें। ऐसी बातों से दिल में कदूरत पैदा होती है। अगर किसी पीर भाई पर पीर की तवज्जो ज्यादा हो, या उसको वजीफा वह जिक्र से ज्यादा फायदा हासिल हो रहा हो, तो उस पर हसद ना करे, ठीक है। हसद तो बहुत बड़ा गुनाह है, रूहानी बीमारी भी है और बाकायदा एक अमली तौर पर इसका इजहार भी होता है हसद का ना। इंसान जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, खुद ही कुड़ता रहता है। हसद किसी के साथ भी ना करें, और हसद जाहिर है किसी बुरे इंसान के साथ नहीं किया जाता। जिसको आप बुरा समझते हैं उसके साथ हसद नहीं किया जाता, जिसको आप अच्छा समझते हैं आगे समझते हैं उसी के साथ हसद किया जाता है ना। तो ये तो वो वाला मामला है ही नहीं कि भाई बुरे को बुरा समझना, तो अच्छे को ही के साथ ही हसद किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ तक जो है वो किसी के लिए, किसी के पास कोई सवाल है शेख कामिल के साथ आगे के मौजूद में, या इवन उससे पहले जो दो और मौजूदात हजार रखे थे कि अखलाक जमीमा और उनका इलाज और अखलाक हमीदा और उनके उसूल के तरीके, तो किसी के भी जहन में कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। हम अब आखिरी टॉपिक इसके अंदर पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि मुरीद बल्कि हर मुसलमान की रोजमर्रा जिंदगी के आदाब, ठीक है। अब हजरत ने अच्छी खासी एक लंबी फहरिस्त बांधी है 40 आदाब की। तो उनमें से सबसे पहला अदब, जो कि सिर्फ मुरीद को नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए जरूरी है, मतलब ये कि जिसको अभी तक कोई शेख नहीं मिला ना, तो वो ये ना कहे कि अच्छा ये तो मुरीदों के लिए जरूरी था, मेरा तो कोई शेख ही नहीं है, तो मैं तो मुरीद ही नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे इन आदाब की जरूरत नहीं है। तो इसको अदब ने यहाँ पे कवर कर लिया कि नहीं, बल्कि हर मुसलमान के जो रोजमर्रा से क्या रहा। तो फरमाते हैं कि नंबर एक, जरूरत के बकदर दीन का इतना इल्म हासिल करे कि जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सके, ठीक है। यानी शरीयत के मुताबिक क्या मतलब? कि अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ठीक है। ये है हमारी जिंदगी का मकसद, इसी को इबादत कहते हैं, इसी को इबादत कहते हैं, ठीक है, कि अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर किसी काम के लिए नहीं भेजा सिवाय इबादत के। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और किसी काम के लिए हमें यहाँ पे खाने पीने एंजॉय करने, बिल्डिंगें बनाने, सड़कें बनाने, और जो है वो रिजोर्ट्स बनाने और खेल कूद करने, कोई काम के लिए हमें अल्लाह ताला ने नहीं भेजा। हमें इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बल्कि हमें बनाया ही इबादत के लिए, जिन्नों को भी और हमें भी। ठीक है, अब हमें ये तो अगर पता चल गया, अच्छी बात है कि हमें पता चल गया कि इबादत के लिए बनाए, लेकिन ये ना पता चल सका कि इबादत कहते किस चीज को, इबादत है क्या और इबादत क्या नहीं है, तो फिर हम कैसे इबादत करेंगे, हम अपना मकसद जिंदगी जो है वो कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना, सीखना, इल्म हासिल करना कि इबादत क्या है और इबादत क्या नहीं है, ये फर्ज है। ठीक है ना, क्योंकि इल्म हासिल किए बगैर आप अमल नहीं कर सकते, तो अमल इबादत जो है वो करी जाती है ना, अमल है ये, लेकिन पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर कैसे करेंगे ना। तो इसी वजह से इल्म हासिल करना फर्ज है, नबी अलैहि सलाम ने भी फरमा दिया ना कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, और एक रिवायत के मुताबिक कुल्ले मुस्लिम व कुल व मुस्लिमतिन, यानी औरत का भी अलग से भी लफ्ज करार दिया, यानी इस्तेमाल किया, लेकिन अगर ना भी इस्तेमाल किया किसी दूसरी रिवायत में, औरत का लफ्ज नहीं भी है, तो मुस्लिम के तहत में सब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हकीकत लफ्ज आदमी, आदमी की क्या हकीकत है कि जो आदम की औलाद है, तो भाई क्या औरतें आदम की औलाद नहीं है? सही, तो वो कहें नहीं हम तो आदमी नहीं है, भाई आप भी आदमी हैं, आप भी औलाद आदम है, उसी तरह से मुस्लिम के अंदर जो है मुस्लिमतुन भी शामिल हो जाती है। तो ये इल्म जो है ना, इसको इल्म हाल भी कहा जाता है, बड़ी हा के साथ, हाल, जो कि फर्ज इल्म है। बड़े मजे की बातें सुनने में मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो एक साहब जो है वो अपने अहवाल बयान कर रहे थे, तो उन्होंने बताया जी कि उनको जो है ना, उनके वाले साहब ने एक दफा एक बात कही कि कुछ डिप्रेशन प्रेशन का शिकार हो रहे थे, एक बार हम क्यों आए, क्या करते हैं यहाँ पे, किस वजह से हम इस दुनिया में आए, तो उनके वाले साहब ने उनको बड़ी अच्छी बात कह दी कि जी हम इस दुनिया के अंदर इबादत करने के लिए, हमें दुनिया में इबादत करने के लिए भेजा गया। ठीक है ना, तो इबादत करने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा हाँ, तो बड़ी जबरदस्त बात मेरे अबू ने कही। ठीक है, मैंने कहा वाकई बहुत जबरदस्त बात आपके वाले साहब ने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कही है, लेकिन फिर इबादत होती क्या है ये नहीं सीखा उन्होंने, बल्कि इंजीनियरिंग सीख ली और आईटी भी सीख ली और पता नहीं और भी क्या क्या चीजें सीख ली, लेकिन इबादत क्या होती है ना ये नहीं सीखा। तो ये तो वही सीखने से आती है ना, ये हमारे ऊपर वही तो नहीं नाजिल होगी ना कि बस बैठे बैठाए कहीं पे हम मुराकबा कर रहे होंगे और ऊपर से जो है वो कोई फरिश्ता आ जाएगा और हमें बता देगा कि जी इबादत क्या होती है और क्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये इल्म हासिल करना जिससे कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजर सके। अब हमारा जो है ना, वो अक्सर मसला ये होता है कि हम इल्म भी हासिल कर रहे हैं ना, तो हमारी नीयत ये नहीं होती कि हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजर सके। इसी वजह से डिग्री भी मिल जाती है, दीनी उलूम की डिग्री मिल जाती है, लेकिन जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं आ रही होती, वही झूठ चल रहे होते हैं, वही जो है वो पुरानी बुराइयां चल रही होती हैं। एक आध जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीली अलहमदुल्ला आ जाती है, या तो वो पता नहीं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है उसकी वजह से आ जाती है, माहौल में जाने जिस भी माहौल में जाएंगे इंसान जो है वो कॉपी करता है, जिस भी माहौल में जाएगा वो उस माहौल के अंदर रंगा जाएगा। तो भाई मदरसे के माहौल में जाएंगे कि मदरसे के माहौल का कुछ ना कुछ तो असर हो ही जाएगा ना, तो वो तो माहौल का असर हो गया ना, नीयत कोई थोड़ी थी कि अपनी जिंदगी को बदलना। ठीक है, तो वो जो माहौल के असर को जो है ना, उसको हम समझना शुरू हो जाते हैं कि हमें मकसद, हमें जो है, हम तो हमारी हमारी जिंदगी को दीन के मुताबिक हो गई, हमारी दीन शरीयत के मुताबिक हो गई, नहीं बिल्कुल गलत है आपकी ये सोच कि आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो गई। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत ही नहीं थी, तो अब जो हुई है ना ये बगैर नीयत की हुई है, और सिर्फ रब रब करने की वजह से हुई। वो जो अंग्रेजी वाला रबिंग होता है ना, व्हेन यू रब अगेंस्ट समथिंग, तो उसका कुछ ना कुछ असर जो है वो चढ़ जाता है इंसान के ऊपर। ठीक है, तो ये नियत करेंगे तो फिर आलिमा कोर्स करेंगी तब भी फायदा होगा, और अगर आलिमा कोर्स किए बगैर दर्स कुरान में शामिल होंगी तब भी फायदा होगा। वैसे भी आलिमा कोर्स का मकसद होता है दीन उलूम की हिफाजत कर, शरीयत के मुताबिक जिंदगी को डालना, ये आलिमा कोर्स का यानी जिसको कहते हैं ना, असल मकसद ये नहीं है आलिमा कोर्स का मकसद। हाँ, उसके जिम्मन में फायदा हासिल हो जाए किसी को तो वो एक और बात है, और वो शेख के साथ यानी जब शेख का हुक्म होता है अलमा कोर्स करने का, तो वो तो शेख के साथ ताल्लुक आपने क्यों बनाया था शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए? तो शेख ने कहा कि अलमा कोर्स कर लो। तो हाँ भाई, क्योंकि शेख के साथ ताल्लुक बनाया था जिंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालने के लिए, तो अब जो है वो शेख अलमा कोर्स करने के लिए कह रहा है, तो वो भी इसी मकसद के लिए फिर फायदा देगा। लेकिन जो अपने शौक और या अपने जो है ना वो यानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, या जो है वो मुझे आई फील गुड अबाउट इट या एवरीवन एल्स इज डूइंग इट है ना, या मुझे कोई जो है वो सनद की जरूरत है, या मुझे जो है वो कोई और डिग्री मिल जाएगी तो मुझे अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, इसके लिए आलमा कोर्स जो लोग कर रही होती है ना वो बहुत गलत कर रही होती है। इससे ज्यादा सख्त बात जो है वो नहीं कहना चाहता इस वक्त। ठीक है, बस क्या लिखा उन्होंने, बदकिस्मती से शायद हम लोग को भी इल्म हाल का सही से पता नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, नहीं पता है इल्म हाल का, हमें पता नहीं है अकायद का ही नहीं पता। इल्म हाल के अंदर सबसे अहम चीज़ और सबसे पहली चीज़ जो है वो अकायद है। ठीक है, फिर उसके बाद इबादात का मामला है और फिर मामलात का मामला है इसके अंदर। अच्छा, तो पहली चीज़ तो हो गई ना जरूरत के बकदर, और जरूरत जो है वो हर उस इल्म की होती है कि जो कि आपकी जिंदगी के अंदर आपको काम करना हो, उसका इल्म शरीयत क्या कहती है उसके बारे में। और इसके अंदर खवातीन के लिए, खास तौर पर खवातीन के लिए, कि अगर शादीशुदा है तो शौहर के हुकूक कैसे अदा करें, ठीक है, और अगर औलाद वाली है तो औलाद के हुकूक कैसे अदा करें, औलाद के हुकूक कैसे अदा करें, क्या है औलाद के हुकूक और कैसे अदा करना, ठीक है ना, ये दो चीजें, क्या और कैसे, क्या और कैसे, ठीक है ना। अब बता दें आपके आलमा कोर्स के अंदर आप कौन सा वाला, शौहर के हुकूक क्या है और कैसे अदा करना, और औलाद के हुकूक क्या है और कैसे अदा करना, पता है आलमा साहिबा को? आलमा के अंदर तो नहीं पता, मैं आलमा को बुरा नहीं कह रहा, बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन हुकूक क्या है ना ये नहीं है, ये तो हमारी डेफिनेशन में से, हमारी डिक्शनरी में से एक चीज खारिज हो चुकी है ना। हुकूक क्या होते हैं और दीन क्या था? दीन तो सरासर हुकूक था, दीन तो पूरा का पूरा था ही हुकूक, लेकिन नहीं, ठीक है, नहीं पता करना इसका। तो हुकूक राइट, अब और हुकूक कि क्या करेंगे जब जिसके साथ रह रहे हैं उसी के हुकूक नहीं पता, ठीक है, बदतमीजियां कर रहे होते हैं खाली, हम जिंदगी भर जो है बदतमीजियां कर करके जो है वो जिंदगी गुजार देते हैं और समझते हैं कि हम बड़े दीनदार हैं, बड़ा हमने दीन को समझ लिया है। अच्छा, दूसरा गुनाहों से बचे, यानी जो इल्म हासिल किया है ना तो अब उस इल्म के ऊपर अमल भी करें, यानी गुनाहों से बचे, ठीक है, क्योंकि इल्म हाल क्या है, क्या करना है उसका इल्म और क्या नहीं करना है उसका इल्म, यही इल्म हाल, लिख लें इस बात को, यही इल्म हाल है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो क्या नहीं करना, इसी को दूसरे अल्फाज में गुनाह कहते हैं, ठीक है। तो अब जब इल्म हासिल कर लिया कि क्या नहीं करना है, तो अब उसके ऊपर अमल करना है कि वाकई वो काम नहीं करना है, यानी गुनाह नहीं करना, ठीक है। फिर तीसरी चीज कि अगर कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर ले, ठीक है, यानी कि वो क्या कहते हैं ना उसको, ये इतनी टॉलरेंस रखी, इतना बर्दाश्त रखा है कि हाँ भाई इंसान है, ठीक है, खता का पुतला है, कमजोर है, गुनाह हो सकता है, गुनाह हो जाएगा, तो तौबा का दरवाजा खुला, ठीक है, अल्लाह ताला ने तौबा का हुक्म भी फरमाया है, अल्लाह ताला तौबा को कबूल भी करते हैं, ठीक है, और बार बार गुनाह करने वाले से भी तौबा को कबूल कर लेते हैं, तो इस वजह से तौबा का दामन कभी भी ना हाथ से जाने दे, तौबा को कभी भी ना छोड़े। एक हदीस मुबारक का मफहूम है, भी चंद दिन पहले ही दोबारा पढ़ी, कि कयामत के दिन ना अल्लाह ताला के सामने फरिश्ते एक शख्स की शिकायत करेंगे कि अल्लाह ये बहुत ही बुरा शख्स था, बार बार तौबा करता था और बार बार तौबा को तोड़ता था, फिर तौबा करता था और फिर तोड़ देता था, फिर तौबा करता था फिर तोड़ देता था, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं अपने इस बंदे को इस्तेकामत वालों में शामिल करता हूँ, इस्तेकामत वालों में शामिल करता हूँ, क्यों? क्योंकि शैतान, अब देखें अल्लाह ताला शैतान का जिक्र करते हैं, हम शैतान का जिक्र नहीं करते, हत्ता के फरिश्ते जो है ना वो भी शैतान का जिक्र नहीं कर रहे, है ना। शैतान फरिश्ते किस बात के ऊपर उनका फोकस है, ये बुरा शख्स है, इसने ऐसा किया, इसने गलत काम किया, राइट। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो शैतान का जिक्र करते, दुश्मन का जिक्र करते कि मेरे दुश्मन ने जो है ना, और इसके दुश्मन ने इसको गिराने से जहां हिम्मत नहीं हारी, उसी तरीके से इसने तौबा करने से हिम्मत नहीं हारी, यानी मेरी तरफ रुजू करने से भी इसने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, तो तौबा जो है ना ये अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का नाम है ना। तो अल्लाह ताला तो तौबा को बहुत पसंद करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला तो मुहब्बत करते हैं तौबा करने वाले से। ठीक है, तो यानी कितनी प्यारी बात है तौबा, कितनी प्यारी बात है। तो हम इससे क्यों जो है वो चूकते हैं, हमारा मसला खाली है कि हमें यही नहीं पता कि तौबा क्या चीज होती है। ठीक है, तौबा कैसे करनी होती है, तौबा की क्या शराइत होती है, हमें ये सारी बातें नहीं पता। तो ये इल्म तो फर्ज है ना हमारे लिए कि तौबा क्या होती है, तौबा को समझना ये फर्ज है हमारे लिए, क्योंकि तौबा करना भी फर्ज है। तो जब पता ही नहीं कि क्या होती है तौबा, तो फिर करेंगे कैसे तौबा। ठीक है, तो गुनाहों के ऊपर नादिम और शर्मिंदा होना, ठीक है, यानी बुरा समझना कि मैंने बहुत बुरा किया, ये गुनाह कर लिया। ठीक है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि अल्लाह ताला से दिल में इरादा करना है, अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगी, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त ये है कि कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसा कदम उठाना कि इस तौबा के ऊपर फिर जो है ना वो कायम भी रह सके, अपनी तरफ से कदम उठाना। बाद में हमें क्या पता कल क्या होने वाला है, लेकिन अभी तो कदम उठा लेना ना, अभी तो जो है वो कोई काम ऐसा कर लेना कि गुनाह से दूर रह सके। ठीक है, तो ये तीन शराइत जो है बस काफी होती हैं, इससे फिर अल्लाह ताला बंदे फरमा देते हैं और तौबा को कबूल कर लेते हैं। कल को फिर गुनाह के अंदर दोबारा अगर पड़ गए तो भाई फिर से तौबा कर लेना। तो तीसरी चीज जो कि हर मुसलमान की रोजमर्रा जिंदगी के आदाब, वो तौबा करना। ये हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह ने ऐसी तरतीब रखी है, यानी तीसरे नंबर पे इसको रखा है। चौथी चीज, किसी का हक ना दबाए। ठीक है, किसी का हक ना दबाए। दबाए का मतलब ये नहीं होता कि कोई हक जो है वो कोई तकिया है और तकिए को मत दबाए, बल्कि हुकूक। ठीक है, जैसे कि अभी फिर बात हुई और पहले भी तफसील से बात हो चुकी है कि दीन है ही हुकूक का नाम। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर दूसरों के हुकूक हैं, किसी का भी हक ना दबाए। ठीक, अब इसमें अल्लाह ताला के भी हक आ जाता है, नबी अलैहिस्सलाम को भी हक आ जाता है, माँ बाप का भी हक आ जाता है, हर एक का। ठीक है, हत्ता के गुलामों का भी हक आ जाता है, खादिमों का भी हक आ जाता है, और जो है वो बल्कि हमारा दीन तो यानी जानवरों का हक भी हमें सिखाता है और पौधों का भी हक हमें सिखाता है। तो जो कोई भी आपके साथ है तो उसका आपके ऊपर हक है, हमारे ऊपर हक है। तो हुकूक अदा करना ही दीन है, हुकूक अदा करना ही दीन है। ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पर एक और भी नुक्ता दिल में आया था, बात जहन में आई थी, तो आपके सामने फिर से बयान कर देते हैं कि ये जो उसूल है ना, ला ताअता लिल मखलूक फी मासियतिल खालिक, कि मखलूक की अताअत नहीं करी जाएगी जहां खालिक की नाफरमानी आती है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना वो हमारी जो हमारे जो जो समझ है ना वो सिर्फ इतनी आती है कि अगर किसी मखलूक ने, यानी अम्मा अप्पा ने या शौहर ने या किसी और बॉस ने, हमारा जो एम्प्लॉयर है, हमारा बॉस है, उसने अगर जो है ना वो शराब पीने का हुक्म दिया ना, तो हम उसका हुक्म नहीं मानेंगे, या उसने जो है ना वो अगर हमें बुत के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो हम उसका हुक्म नहीं मान सकते। ठीक है, या इस किस्म की कोई बहुत ही बड़ा किस्म का कोई गुनाह, अगर उसका हुक्म जो है वो अम्मी अबू दे रहे हैं ना, तो हम उसका हुक्म नहीं मान सकते। लेकिन अगर हम दीन को हुकूक के नजर से देखना शुरू करते हैं ना, कि दीन है ही हुकूक अदा करना, ठीक है, तो फिर जो है वो बात मुकम्मल होती है कि अगर कोई भी हमें दूसरों का हक मारने का हुक्म दे रहा है तो हम उसकी बात नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला का दीन यही है, हक अदा करना। ठीक है, तो किसी का भी हक मारने के लिए, किसी के भी हक दबाने के लिए, या किसी की भी हक तलफी करने के लिए, ठीक है, इसी के लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है, हक तलफी, हक मारना, हक दबाना, एक दूसरा लफ्ज है जिससे कि इसको ताबीर किया जाता है, वो दूसरा लफ्ज है जुल्म करना, जुल्म करना, ठीक है। तो किसी के कहने के ऊपर भी हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, अगर इस तरीके से दीन को देखेंगे ना, और इस तरीके से अपने मामलात को देखेंगे, तब जो है वो दीन हमें समझ में आएगा, और तब हम जो है ना वो कम से कम फैसला कर सकेंगे कि अभी किसी की बात माननी है कि किसी की बात नहीं माननी है, ठीक है। जुल्म करने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ मैं, हक तलफी करने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ। तो नंबर 4 के अंदर किसी का हक ना दबाए, ना किसी बड़े के कहने के ऊपर किसी का हक दबाए, ना किसी बड़े के कहने के ऊपर किसी का हक दबाए, इसके अंदर ये भी शामिल है। मतलब तो ये भी तो हो सकता है ना कि हाँ मैं अपनी मर्जी से तो मैं नहीं दबाता, हाँ जब अम्मी कहती हैं तब जो है दबाना पड़ जाता है, नहीं? अब्बू कहते हैं तब दबाना पड़ जाता है, फिर तो उनकी बात माननी चाहिए ना, अब्बू है आखिर को, उन्होंने इतना खिलाया पिलाया, उतना उन्होंने सब कुछ दिया हमें, तो अब जो है वो उनके कहने भी किसी का हक मारना ये तो हक बनता है उनका, जी नहीं, अब्बू का ये हक नहीं बनता है, अम्मी का ये हक नहीं बनता है, बेशक उनके पैर तले होगी जन्नत, बल्कि है जन्नत, लेकिन उनका ये हक नहीं बनता। 5वां के माँ की, माल की मोहब्बत, माँ की बात हो रही है तो माल ही पढ़ लिया, माल की मोहब्बत है और शोहरत की ख्वाहिश ना रखे, हलाल तरीके से माल कमाए उसके लिए, बल्कि असबाब इख्तियार करे, माल को बढ़ाने के लिए भी जो है वो हलाल जराए इस्तेमाल कर सक कर करे कर सकता नहीं बल्कि करे। नबी अलैहिस्सलाम तजारत करते थे, सहाबा कराम तजारत करते थे, तो क्या मतलब तजारत का मतलब क्या होता है भाई, माल बढ़ाने के लिए ना, प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए तजारत की जा रही होती है, ठीक है। तो तिजारत जरूर करे, माल जरूर बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन दिल में मोहब्बत और शोहरत की मोहब्बत आ रहा है, माल की मोहब्बत और शोहरत की मोहब्बत, ठीक है। शोहरत भी अल्लाह ताला बढ़ा रहे हैं भाई, आप जब कोई नेकी का काम करेंगे, आप जो है वो जब कोई मुआशरे में कोई यानी अच्छा किरदार अदा करेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे, आपकी शोहरत बढ़ेगी, ठीक है। तो एक चीज होती है शोहरत का बढ़ना अच्छा काम करने की वजह से, एक चीज होती है शोहरत का शौक रखना, ठीक है। शोहरत का शौक जो है ये हराम है, ठीक है, उसको हुब्बे जाह कहते हैं, हुब्बे जाह ये रूहानी बीमारियों में से एक बहुत बड़ी रूहानी बीमारी है, और हुब्बे माल भी जो है ना ये भी बहुत बड़ी रूहानी बीमारी है। तो दिल के अंदर माल की मोहब्बत रखना, शोहरत की मोहब्बत रखना, इससे मना किया जा रहा है, लेकिन जब शोहरत मिल रही है या माल मिल रहा है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। पुरतकल्लुफ खाने और लिबास की फिक्र में ना रहे, अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है खवातीन के लिए, खुसूसन पुरतकल्लुफ लिबास की फिक्र करना, खाने की तो अक्सर को फिक्र नहीं भी होती है, डाइटिंग की वजह से वजन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेचारियां दूसरों को पुरतकल्लुफ खाना बना बना के खिला रही होती है, लेकिन खुद जो है वो कम खा रही होती है, अक्सर खवातीन के साथ ये मामला होता है इल्जामाशात में। तो पुरतकल्लुफ खाने जो है वो यही है कि यानी डिमांड ना करें, इसका मकसद क्या होता है कि जी नाज नखरे नहीं, अब जब खुद बनाने होते हैं ना तो फिर तो बड़ा ये होता है कि हाँ भाई जो पुरतकल्लुफ खाने की डिमांड कर रहा है ना वो बहुत बुरा लगता है ना, गलती हो गई, कुछ नमक कम पड़ गया, कुछ जो है वो कुछ और चीज़ ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो अब जो नाक मुँह चढ़ाते हैं ना तो वो बहुत बुरे लगते हैं कि वो क्यों, उनको हर वक्त जो है वो अच्छा खाना चाहिए होता है, मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना चाहिए उनको, क्यों हर वक्त जो है वो, ठीक है। लेकिन जब खुद किसी के दस्तरखान पर बैठी हुई होती है तो वहां पे अगर डिमांड हो रही है कि नहीं इसने अच्छा खाना क्यों नहीं बनाया, इसने ये क्यों नहीं बनाया, ठीक है ना, और उसको जो है वो तनकीद कर रही है, बुरा भला कह रही है, उससे मना किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप कल को सास बन गई, अभी भी बनी हुई है, ठीक है, तो अब जो है वो बहू साहिबा जो खाना बना रही है ना, तो अब बहू से जो है वो पुरतकल्लुफ खानों की फिक्र ना करें, सही है कि वो रोजाना जो है ना वो या तो बड़े मुरक्कन किस्म के खाने बना के खिलाए हमें, या ये कि हमारे जो जो रिवायती खाने हैं, जो खास किस्म के हमारे आबाओ अजदाद के खाने हैं, जो वही खाने जो है ना वो हमें खिलाए, और जो है ना वो अगर नहीं खिला रही है तो फिर बहुत बुरी बहू है, ऐसी तो बहू किसी का काम की नहीं होती है। ठीक है, तो जब दूसरे के दस्तरखान पे बैठे, यानी दूसरे का पकाया हुआ जो है वो सामने आकर के रखा जा रहा है ना, तो उस वक्त उनकी फिक्र में ना रहे, ये आदाब में से है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो आप बेअदब हैं। सही है, आसान जुबान में, ताकि बात जरा सा दिमाग को भी लगे कि अगर आप पुरतकल्लुफ खानों की फिक्र में हैं तो आप एक बेअदब इंसान हैं, बेअदब इंसान। ठीक है ना, अब उम्मीद है कि जरा दिमाग ठिकाने आएगा ये बात सुनकर के, कि आप बेअदब इंसान कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आदाब ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिंदगी के आदाब। बाकी लिबास की फिक्र में ना रहे, तो भाई उसकी फिक्र में ना रहने का मतलब भी खवातीन के लिए आसान करते हुए यही है कि बस हर वक्त जो है ना वो जोड़ा बनाना, हर यानी एक बहुत अनफॉर्चुनेटली आप लोग को भी होगा इसका तजुर्बा या कम से कम मुशाहिदा। ठीक है, कि यानी शॉपिंग मॉल्स की और दर्जियों की कितने जो है वो तवाफ किए जा रहे होते हैं। दर्जी की दुकान है, जो वो सिलाने वाले कपड़े होते हैं तो उसके लिए दर्जी है ना, यानी इतनी दफा दर्जी के यहाँ जाया जाता है, या इतनी दफा दर्जी के यहाँ जो है ना वो घर के मर्दों को भेजा जाता है या ड्राइवरों को भेजा जाता है, कि जितनी दफा जो है ना वो शायद मस्जिद के अंदर भी बंदा ना जाता। ठीक है, और उसी तरीके से जो है वो कुर्तुबा मार्केट, कराची वाले जो है वो जानते हैं ना, कुर्तुबा मार्केट है तो हैदरी मार्केट है तो फलानी मार्केट है, और लाहौर के अंदर जो है पता नहीं कौन कौन से मार्केट्स हैं, इछरा मार्केट का भी बड़ा नाम सुनाते हैं लाहौर के अंदर। और इसी तरह हर शहर के अंदर, रियाज शहर के अंदर आप देख लें, जो रियाज में रहते हैं, सऊदी अरब के शहरों में जो रहते हैं, कितने मॉल्स हैं, कितने मॉल्स हैं। दुनिया में इतने मॉल्स नहीं है जितने के रियाज शहर के अंदर मॉल्स हैं, पर स्क्वायर फीट जो है ना, ये यार रिकॉर्ड ब्रेकर है ये शहर मॉल्स का। तो ये मॉल्स जो है वो किन से भरते हैं, ये सारी खवातीन जो है ना वो मॉल्स के अंदर मुस्तकिल मौजूद रहती हैं। हत्ता के हमारा जो तो दफ्तर था ना वो मॉल की बिल्डिंग में था, तो हम जब दफ्तर पहुंचे होते थे सुबह 8:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, उस वक्त जो है ना वो खवातीन जो है वो सऊदी औरतें वो अपने ड्राइवरों के साथ आई हुई होती थी, और जो है ना वो उतर जाती थी और हम तो ऊपर चले जाते थे मॉल, यानी जहाँ पे ऑफिस था, और वो मॉल्स की फ्लोर्स के अंदर जो है ना वो घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, राइट। सुबह सवेरे जो है वो मॉल में आई हुई होती थी, और पता नहीं कब तक रहती होंगी, फिर कब वापस जाती होंगी। मॉल भरे हुए भाई, इतने मॉल खुल क्यों रहे, क्योंकि उनकी डिमांड है, बिक्री होती है, जब ही तो इतने सारे खुलते हैं। उसी तरह हमारे मुल्कों के अंदर भी खवातीन जो है वो कपड़े की दुकानों में, और यानी हर वक्त। अच्छा चलो जी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो इस वजह से अगर कोई खातून, कोई कह सकते हैं ना कि अगर हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में और पाकिस्तान में, कि अगर एक औरत जो है वो साल में एक दफा भी अगर कपड़े की दुकान पे जाती है ना, तो भी कपड़े की दुकान पे आपको हर वक्त रश नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई ना बाहर से, बाहर की नजर, जो बाहर वाले लोग देख रहे हैं कि भाई वहाँ मॉल के अंदर औरतों का हुजूम है, तो वो कहेंगे कि हाँ भाई शायद इतनी औरतें हैं इस दुनिया की, इस मुल्क के अंदर, इस साल में एक दफा भी अगर एक औरत आएगी तो भी यहाँ पे रश ही रहेगा। लेकिन अगर अंदर से आप देखें, यानी घर वालों को देखें, घर के हालात को देखें, तो क्या नजर आता है कि हफ्ते में 2 या 3 चक्कर जो है ना वो तो लग रहे होते हैं कम से कम। ठीक है, कपड़े खरीदने के लिए जा रही है, कपड़े बनाने के लिए, फिर कपड़े खरीदने के लिए जा रही है, फिर कपड़े बनाने के लिए, फिर कपड़े खरीदने के लिए जा रही है, फिर कपड़े बनाने के लिए जा रही है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर के अंदर भी यही मामला है कि जो बड़ी बेटी थी उसके कपड़े छोटी बेटी ने पहने, उसके कपड़े फिर उससे छोटी बेटी ने पहने, हत्ता के जो कजन्स होते हैं ना, बड़ी कजन्स, तो बड़ी कजन्स के कपड़े जो है वो छोटी कजन्स पहन रही होती है, यानी सगे भाई बहन भी नहीं, कजन्स जो है ना वो दूसरे अपने कजन्स के कपड़े पहन रहे होते हैं। भाई जब तक वो कपड़ा खराब नहीं हुआ, जब तक वो कपड़ा जो है वो फेंकने के काबिल नहीं हुआ, तो क्या क्या यानी क्या तुक बनती है कि आप उसको जो है वो ना इस्तेमाल करें। जब घर के अंदर दूसरे बच्चे मौजूद हैं, छोटे बच्चे मौजूद हैं, कल भी हमारे घर वाले यही बता रहे थे, ये जो अभी उम्मे कुलसूम पहनी है ना, ये वो जो है जैनब के लिए खरीदा था, जो जानते हैं घर को मालूम है उनको बेटियों का। ठीक है, उसके लिए खरीदा था, अब जो है वो सबसे छोटी वाली बेटी पहन रही है। तो यानी अगर इस किस्म की सोच बन जाए तो फिर क्यों बाजारों के चक्कर लगाएगा। हाँ, दूसरा कोई ला करके तोहफा दे दे तो वो एक मुसीबत हो जाती है कि अब इसका क्या करें। ठीक है, तो माल की मोहब्बत और शोहरत की ख्वाहिश ना रखे और पुरतकल्लुफ खाने और लिबास की फिक्र में ना रहे। अल्लाह ताला दे देता है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन इस फिक्र में अपनी जिंदगी जाया ना करें। अगर गलती पर कोई टोके तो अपनी गलती तस्लीम करके फौरन इकरार और तौबा करें। ठीक है, ये भी आदाब में शामिल है कि गलती की इसलाह के लिए अगर कोई आपको कह रहा है ना तो उसका शुक्रिया अदा करें। जुबान से नहीं शुक्रिया अदा कर रहे तो कम से कम दिल में तो उसको शुक्र गुजार रहे कि भाई गलती की इसलाह करने वाला कोई तो है। सही है, तो इकरार कर ले और तौबा कर ले। इसके ऊपर भड़क जाना और इसके ऊपर जो है ना वो दुश्मनियां बना लेना या किसी को झिड़क देना, गलती की इसलाह करने वालों को झिड़क देना, ये बदतमीज लोगों की अलामत होती है। उम्मीद है कि आप में से और हम में से कोई भी बदतमीज इंसानों में से नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर कोई ऐसा शख्स होता है तो फिर उसकी गलतियां चलती रहती हैं और गलतियां जो है ना वो बढ़ती हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। तो अगर इसलाह कर ली तो खत्म हो जाती है, लेकिन इसलाह नहीं करी तो अपने मुकाम पे रहती नहीं है, अपने साइज पे नहीं रहती बल्कि ग्रो करती है। ये बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग चीज होती है दुनिया के अंदर, गुनाह गलती। तो इस वजह से जो गलती की इसलाह कर रहे हैं ना तो उसको तो अपना मोहसिन समझना चाहिए। और सातवां पॉइंट यहाँ तक इरादा था आज क्लास में मुकम्मल करने का, अगर टाइम अभी रेडी हो चुका है, कि सख्त जरूरत के बगैर सफर ना करे। अजीब बात, सख्त जरूरत के बगैर सफर ना करे। सफर में बहुत सी बातें बे एहतियाती की होती हैं, बहुत से नेक काम छूट जाते हैं, वजीफों में खलल पड़ जाता है, वक्त पर कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा यानी ये एक यूनिक सा नुक्ता है जो कि उम्मीद तौर पर हमें सुनने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब सफर का जो मामला है तो उसमें फिर मुख्तलिफ किस्म के सफर होते हैं, जिनमें से अक्सर का जो है ना वो खवातीन के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर दीन की तबलीग के लिए सफर, तो अल्लाह ताला ने दीन की तबलीग के लिए सफर जो है वो खवातीन के ऊपर रखे ही नहीं। ठीक है ना, वो तबलीगी जमात में जो सफर होता है ना वो दीन की तबलीग के लिए सफर नहीं होता, वो अपने महरम मर्दों के साथ जो होता है ना वो अपनी इसलाह के लिए सफर होता है। ठीक है ना, या होना चाहिए कम से कम अपनी इसलाह के लिए अपने महरम मर्दों के साथ। अगर कोई बगैर महरम के साथ तबलीगी सफर कर रहा है तो भाई उसका मसला है, या कोई जो है ना वो दीन दुनिया में फैलाने के लिए खातून जो है वो सफर कर रही है तो वो उनका मसला है, बट ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। दीन की तबलीग के लिए औरतों का सफर नहीं है, तो वो तो खत्म हो गया मामला। फिर उसके बाद जॉब के लिए सफर, तो भाई जॉब जो है वो औरतों के ऊपर अल्लाह ताला ने रखी नहीं है, मजबूरन कोई कर रही है तो फिर उसको तो करना पड़ेगा। मजबूरन अगर वो जॉब कर रही है तो वो शहर में जॉब करे या बाहर जॉब करे, बहरहाल वो तो मजबूरी है, लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर रखा नहीं है। ठीक है, तो औरत के लिए सफर जो है फिर ले दे करके क्या रह जाता है, या तो हज उमरे का सफर रह जाता है। तो हज उमरे का सफर, तो भाई हज तो फर्ज है तो उसके लिए तो सफर करना होगा, और अगर दोबारा भी कर रही है तो वो भी महरम मर्दों के साथ ही करेगी। और अगर है ऐसा हजरत जैसा मामला है हर साल जो है वो माशाल्लाह मजान सफर करने की तैयारी है तो वो एक एक्सेप्शनल केस होता है। ठीक है, लेकिन औरतों के लिए जो ये नुक्ता है ना वो जो बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल होता है वो क्या होता है, शादीशुदा औरतों के लिए सफर वो होता है कि अपने घर यानी जो शोहर के साथ जिस घर के अंदर रह रही है ना, ठीक है, जो कि उसका अपना घर ठीक है करार पाता है, तो उसको छोड़ करके जो है ना बार बार अम्मी के घर सफर, अम्मी के घर सफर, मुझे अम्मी के यहाँ जाना है। ठीक है, तो ये जो अम्मी जब तक दुनिया में रहती है ना तो इसका जो दिल जो है ना वो अम्मी के घर की तरफ अटका रहता है, ये औरत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपना घर बनाने की फिक्र करनी चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है ना, कि अपना घर कैसे बनाना है इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। जिस औरत को इस बात की फिक्र नहीं होती है ना, ठीक है, कि उसने इस दुनिया में अपना घर कैसे बसाना है और आखिरत में अपना घर कैसे बसाना है, जिस औरत को इसकी फिक्र नहीं होती ना उसको हर वक्त अम्मी के घर जाने की फिक्र रहती है। अम्मी के घर जाने के लिए रहती है। हाँ, अम्मी को तकलीफ है, कोई परेशानी में है, तो परेशानी को रिमूव करने के लिए, अम्मी की खिदमत के लिए शौहर की इजाजत के साथ जा रही है, तो वो एक अलग चीज है ना। लेकिन अम्मी जो है वो परेशानी की, अपनी तरफ की बनाई हुई परेशानी है अम्मी की, तो इस वजह से ना मुझे तो अम्मी की हर वो परेशान रहती है, तो इस वक्त जो है वो मुझे अम्मी के घर जाने, अम्मी के घर जाने, अम्मी के घर जाने। ठीक है, तो इस औरत का फिर जो है ना, ये इसका जो अपना घर होता है ना, वो कभी भी नहीं बस पाता है, बन पाता है, उसका अपना घर नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि पाकिस्तान इंडिया में जो खवातीन होती है ना, वो हर वक्त हज उमरे के सफर तो नहीं कर रही होती, ना कर सकती है, और दीनी तब्लीग का सफर तो वैसे भी उनके लिए मुनासिब नहीं होते। ठीक है, तो उनके लिए जो है ना फिर ये सफर जो है ना, ये बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है, फिर उनका घर बस नहीं पा रहा होता, वो सीख नहीं पा रही होती है? कैसे शौहर का हक कैसे अदा करना, तो औलाद का हक कैसे अदा, उनको हर वक्त सफर की पड़ी रहती है। तो ये एक पॉइंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जिसको अपना घर बसाने की फिक्र पड़ जाती है ना, और आखिरत का घर बसाने की फिक्र पड़ जाती है, फिर उसके दिमाग पर से ये अम्मी के घर का भूत जो है ना वो उतर जाता है। ठीक है, अगरचे कि अम्मी का घर नजदीक भी हो, हाँ अगर अम्मी का घर अगर नजदीक है तो क्या मतलब है, अम्मी का घर नजदीक है तो हर वक्त अम्मी के घर जाती रहेंगी भाई, हफ्ते में एक दफा चले जाए अगर नजदीक है तो, ठीक है ना, और मुलाकात करके आप वापस आ जाए, लेकिन अपने घर के ऊपर फोकस कर। ठीक है ना, और इसके लिए भी सीखना पड़ता है भाई, सीखे बगैर काम नहीं होता। ये बेतवज्जुही जो होती है ना अपने घर की तरफ से, ये फिर औरत को कहीं का नहीं छोड़ती। फिर उसके बाद दूसरों पे इल्जाम, वो मुझसे खुश नहीं रहते हैं, और सास मुझसे खुश नहीं रहती हैं, और जो है फलाने जो है वो लोग हर वक्त जो है वो तंग रहते हैं। भाई आपका कौन सा दिमाग जो है वो कभी लगता है उस काम के ऊपर जो काम आपको करने का था? आप भी तो हर वक्त जो है ना वो यानी बेचैन ही रहती हैं, बेचैन रूह हैं, तो अब आप खुद भी अपने आप से परेशान रहती हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे भी हर वक्त आपसे परेशान ही रहेंगे ना, फिर वो आप के ऊपर एतराज करेंगे। ठीक है, लेकिन अपनी गलती भी तो देखे ना, आपको फोकस है अपने घर के ऊपर के नहीं? ठीक है, अच्छा क्या लिखा है उन्होंने, इजियर टू स्टे विदी एज एन स्टेइंग अवे फ्रॉम सिंस एट होम, बट एट वर्क प्लेस इट्स डिफिकल्ट, हाउ कैन आई रिमेन विजिलेंट देयर सेम वे एज होम, यू कैंट, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सेम वे तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। सहाबाए कराम जब नबी अलैहिस्सलाम सलाम की सोबत में रहते थे, तो उनके जो दिल की कैफियत होती थी, क्या वो होती थी जब वो अपने घर वापस चले जाते थे? ठीक है, तो सहाबाए कराम के दिल की कैफियत चेंज हो जाती थी इस सोबत से उठ करके जब अपने घर की सोबत में जा रहे होते थे। तो एक औरत जो है जो अपने घर के अंदर बैठ करके जो दिल की उसकी कैफियत होती है, क्या वो वर्क प्लेस के ऊपर जा करके उसकी सेम कैफियत रह सकती है? ऑफ कोर्स नहीं रह सकती। ठीक है ना, तो सेम के तो जो है ना, यानी डोंट व्हेन वी ट्राई टू रीच आउट फॉर द स्टार्स वी कैंट। ठीक है ना, दैट समथिंग दैट्स इम्पॉसिबल, तो उसके लिए कोशिश करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी उसके लिए कोशिश करना जो है वो बहुत जाया करने की तरह। अलबत्ता जो वकूफ कल्बी गुनाहों से बचना फर्ज है, ठीक है, तो वो घर में भी फर्ज है, और वो बाजार में भी फर्ज है, और वो जॉब पे भी फर्ज है, और वो रिश्तेदार के घर में भी फर्ज है। ठीक है ना, तो ये तो नहीं है कि जॉब पे जाकर के जो है ना वो गुनाह जायज हो जाते हैं। ठीक है, तो दिल की कैफियत की बात हो रही थी कि वो तो आप सेम नहीं रख सकते, लेकिन गुनाहों से बचना तो भाई दिल की कैफियत के बगैर भी ना, दिमाग की भी तो एक कैफियत होती है ना, ये दिल और दिमाग की कैफियत अलग अलग होती है। ठीक है, तो दिल की कैफियत तो नहीं होगी एक जगह, यानी हर जगह एक जैसी नहीं होगी, लेकिन दिमाग की कैफियत हर जगह एक जैसी होनी जरूरी है। क्या मतलब, गुनाह है, पिटाई होगी, सजा मिलेगी, नहीं कर सकती, चाहे जिस माहौल में भी हूं नहीं कर सकती। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल एक ये जंग होती है। ठीक है, कि जहां कहीं भी हो ना मैंने गुनाह नहीं करना, ये एक जहनी सोच होती है, एक जहनी फिक्र होती है, और इसके लिए फिर अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना, तौबा करते रहना, और हर वक्त जो है वो अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखने की कोशिश करना कि अल्लाह बस इन खौफ की वजह से ना, अल्लाह ताला के अजाब के खौफ की वजह से। बाकी इसके अंदर आसानी उसी वक्त होती है जब जितना अल्लाह ताला से इंसान जो है वो ताल्लुक बनाता है, तौबा करता है, जुबान से कम जिक्र करता रहे, इससे फिर उसके अंदर फायदा हो जाता है, आसानी हो जाती है। अच्छा, आप इसमें रहनुमाई करें कि हम लोग आपके कहने पे इल्म अल्लाह के लिए इल्म हासिल कर रहे हैं, इसमें मेहनत भी करने की कोशिश करते हैं कि नियत अल्लाह के लिए हो, बस दुआ भी आप कर दीजिए। जी, और कोई सवाल अगर है तो पूछ लीजिएगा, वरना अपना ये वाली क्लास खत्म करते हैं और अगली क्लास थोड़ी सी ब्रेक के बाद।